जो पुरुषार्थी कर्म से ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। बिन मांगे उसे मोती मिलते, वो सदा मुस्कुराता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है।
ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर होमवर्क दिया। सभी को याद है ना बाबा ने क्या होमवर्क दिया? दुआएं दो, दुआएं लो और वृत्ति के द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन करो। आजकल वैज्ञानिक बहुत शोध कर रहे हैं और शोध करके उन्होंने एक बात बताई है कि इस सृष्टि में आजकल पीड़ा की तरंगे बहुत फैल गई हैं। वो पीड़ा की तरंगे इसलिए फैल गई हैं कि पशुओं के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर, प्रकृति के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने अपनी खोजों से ये सिद्ध किया है कि जैसे चारों ओर पशु प्राणियों का वध होता है तो उनकी जो आहें निकलती हैं वो वायुमंडल में फैल जाती हैं। उसी के कारण भूकंप, बाढ़, तूफान, सूखा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि ये सब कुछ होता है। दूसरा, संसार में हर घर में कलह क्लेश के कारण लोग दुखी हैं, उनकी भी आहें निकलती हैं, उसके कारण भी संसार का वातावरण बड़ा भारी है। तीसरा, कई प्रकार से अकाल मृत्यु होती है तो अकाल मृत्यु में मरने वाले को भी तकलीफ और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी तकलीफ, तो उनकी भी पीड़ा की तरंगे वातावरण में फैलती हैं, उससे भी वातावरण भारी होता है। और मनुष्य नेगेटिव तो सोचता ही है, तो इन सब बातों के कारण जैसे पूरे वातावरण में जहर घुला हुआ है, तो जहर घोलने वाले तो संख्या में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उस जहर को अपनी वृत्ति के द्वारा खत्म कर सकें या वातावरण में अमृत तुल्य वाइब्रेशन फैला सकें ऐसे तो बाबा के बच्चे बहुत थोड़े हैं। अब एक तो हम संख्या में थोड़े और अगर ऊपर से हम भी लापरवाही वश कभी कभार गलत सोच लें तो क्या परिणाम निकलेगा? हम भी उन लोगों की तरह ही वातावरण को भारी करने लग जाएं तो क्या होगा? भगवान के कार्य को देरी लगेगी। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे पुरुषार्थ तो करते हैं लेकिन तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। तीव्र पुरुषार्थ का मतलब ये है कि हमारा हर संकल्प कंस्ट्रक्शन में जाना चाहिए, डिस्ट्रक्शन में ना जाए। डिस्ट्रक्शन करने वालों की तो बहुत लंबी चौड़ी फौज है। इसलिए बाबा ने बहुत सरल काम दिया कि आप जहां भी रहते हो, जिस भी शहर में, स्थान पर, वहां वृत्ति के द्वारा एक ऐसा सुंदर वाइब्रेशन बनाओ कि उस पवित्र वातावरण में जो भी आत्मा आए उसको बिना मेहनत की अनुभूति हो और उसका परिवर्तन हो जाए। जैसे मधुबन में आते हैं तो यहाँ का वातावरण बड़ा शक्तिशाली है, सोच के कुछ आता है व्यक्ति और यहाँ आते ही सब सोची हुई बातें भूल जाता है, तो वातावरण ने उसका परिवर्तन कर दिया। ऐसे ही हम अपने घरों में, सेंटरों पे, ऑफिसेज में, गली मोहल्लों में अगर अपनी वृत्ति को शक्तिशाली बना के रखें तो उस वातावरण से प्रभावित जरूर होंगे लोग। अब बाबा ने कहा कि वृत्ति शक्तिशाली तब बनेगी जब पहले हमारे अंदर शक्तिशाली विचार होंगे, क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि बाहर वही चीज निकलती है जो पहले हमारे भीतर हो। जैसे मान लो हम कोई बदबूदार चीज खा लें तो उस चीज की बदबू मुंह से कई देर तक आती रहती है, क्यों? क्योंकि अंदर जैसी चीज गई उसके वाइब्रेशन वैसे ही बाहर निकलेंगे। तो वृत्ति शक्तिशाली तब बने जब हमारे अंदर गलत चीज जाए ही ना। जैसे मुख से हम गलत शब्द कभी बोलते हैं तो उसका कारण क्या है? कानों से या तो हमने उसको सुना है, आंखों से या तो हमने उसको देखा है। अगर वो कानों के द्वारा अंदर ही ना जाए, आंखों के द्वारा अंदर ही ना जाए, तो मुख के द्वारा बाहर कैसे निकलेगा? तो पहला अटेंशन तो ये चाहिए कि मेरे भीतर बाहर से कोई भी गलत बात ना जाए। और दूसरी बात, बाबा ने कहा कि अगर अपने अंदर दुआएं भरनी है, श्रेष्ठ वृत्ति भरनी है, तो उसके तीन तरीके हैं। पहला तरीका है कि दुआओं का सागर तो परमात्मा है, शिव बाबा है। हम देखते हैं, बाबा से मिलते हैं, बाबा जब से आते हैं और जब तक जाते हैं तब तक दुआएं बरसाते रहते हैं। जैसे झरने से नॉन स्टॉप पानी झरता रहता है, ऐसे बाबा के नैनों से, वाणी से नॉन स्टॉप दुआएं झड़ती रहती हैं। तो जितना हम बाबा का सानिध्य करेंगे, तो कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। अगर हम इस चित्र को अपनी आंखों में बसाएं कि बाबा कैसे लगातार दुआएं बरसाता रहता है, कितनी आत्माएं बैठी हुई हैं, और बाबा कहता है मैं केवल सामने बैठी आत्माओं को नहीं देखता, मैं तो उनको भी देखता हूं जो सामने नहीं है। कितनी आत्माओं के प्रति बाबा एक साथ कितनी दुआएं बरसाता है, वरदान बरसाता है, हर आत्मा महसूस करती है कि मैं भरपूर हो गई। तो बाबा को हमको फॉलो करना है, और बाबा को हम देखते हैं तो देखी हुई चीज को फॉलो करना तो सरल होता है ना। तो अगर बाबा के इस रूप को हम याद रखें कि हमारा बाबा कैसा है, हमारा बाबा क्या करता है, तो हमको बार बार बाबा का ये रूप याद आएगा, और हम दुआएं देने में हम भी नॉन स्टॉप हो जाएंगे। सपने में भी हमारे अंदर से दुआएं निकलेंगी। हमारा जो दूसरा तरीका है सोचने का, वो तो हम भूल जाएंगे। जैसे बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को इच्छा मात्रम अविद्या हो जानी चाहिए, ऐसी ही बद दुआ मात्रम अविद्या, नेगेटिव थॉट्स मात्रम अविद्या, गलत सोच मात्रम अविद्या, ये अंदर आए ही ना, ऐसी हमारे अंदर शक्ति पैदा हो जाएगी। दूसरी बात बाबा ने बताया कि बाबा ने हमको जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का एक एक शब्द दुआ का ही रूप है। चाहे वो धारणा की बातें हैं, चाहे वो ज्ञान की बातें हैं, चाहे वो योग की बातें हैं, बाबा ने ज्ञान भी वरदान के रूप में दिया है। तो अगर हम उस ज्ञान का मनन करें, स्मरण करें, चिंतन करें, उस पर विचार करें, उन बातों को अंदर ही अंदर घोटते रहें, तो जैसे चंदन को घोटते हैं तो खुशबू अपने आप पैदा होती है, और हमने अपने अंदर उन ज्ञान की बातों को घोटने की आदत बना ली, तो अंदर जितनी वो बातें घुटेंगी उतना बाहर अच्छा अच्छा ही निकलेगा, क्योंकि जो अंदर होता है वही बाहर निकलता है। आंखों से भी बड़ी प्यारी सुंदर दृष्टि लोगों को दिखाई देगी, चेहरे से भी लोगों को बड़े अच्छे वाइब्रेशन आएंगे, जिसको बाबा कहते हैं बच्चे चाल और चलन से सेवा करो। आप बच्चे चेतन म्यूजियम बन जाओ, म्यूजियम के चित्र जैसे लोगों को संदेश देते हैं, ऐसे आपका चेहरा लोगों को संदेश दे। लेकिन कब? जब अंदर में हम ज्ञान का निरंतर स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, उसको घोटेंगे। और तीसरी बात बाबा ने बताई कि आपके जीवन का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आप स्मृति में लाओ। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है हमारा? नारी से श्री लक्ष्मी बनना और नर से श्री नारायण बनना। अब लक्ष्मी के चित्र हमने बहुत प्रकार के देखे हैं, भक्ति में भी देखे हैं, ज्ञान में भी देखे हैं, नारायण के भी चित्र देखे हैं। हमने कोई ऐसा चित्र नहीं देखा जिसमें वो दुआएं ना दे रहे हों, वरदान ना दे रहे हूँ, दाता के रूप में ना हूँ, भक्तों के ऊपर, पुजारियों के ऊपर उनकी कितनी स्नेहमयी दृष्टि दिखाते हैं, कितना वो भरपूर हैं, तो वो किसका चित्र है? वो मेरा ही तो चित्र है। मैंने ही तो ऐसे वरदान दिए हैं, मैंने ही तो ऐसे भक्तों को तृप्त किया है। तो मेरा चित्र अगर वरदान दे रहा है तो मैं चेतन क्या वरदान नहीं दे सकती? तो अगर हम अपने उस चित्र को अपने सामने रखें, ये मेरा चित्र है और मुझे ऐसा बनना है, अभी नहीं बनना लेकिन मैं तो अनेकों बार ऐसी बनी हूं और मैंने अनेकों बार ऐसे वरदान लुटाए हैं, अपने उस रूप को देख करके हमको उमंग भी आता है, प्रेरणा भी आती है, खुशी भी होती है, अपने आप पर गर्व भी होता है, और उसको देखते देखते हम वैसे बनते भी जाते हैं। तो ये तीन बातें अगर हम याद रखें तो दुआओं का स्टॉक हमारे भीतर जमा हो जाएगा। अब बाबा ने कहा कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं, बद्दुआ देते तो नहीं है, इस बात में तो सब पक्के हो गए हैं, सबको ये बात पक्की हो गई है कि हमको बद्दुआ देनी नहीं है, क्योंकि हम वरदानों के सागर के बच्चे हैं और हम बाबा के मददगार बच्चे हैं, इसलिए हमको बाबा के कार्य में मदद करनी है, अपने संकल्पों का सहयोग देना है, ये तो सबको पक्का हो गया है। लेकिन बच्चे एक गलती करते हैं, बद दुआएं ले लेते हैं। अब जब हम ले लेंगे तो क्या करना पड़ेगा? जिस चीज को हम स्वीकार कर लेंगे, जो चीज हमने अपने जीवन में, अपने चरित्र में, अपने विचारों में भर ली, तो बिना चाहे भी वो चीज बाहर निकलेगी। इसलिए जो बद दुआ को लेगा वो दिए बिना रह नहीं सकेगा, उसका करेगा क्या? उसने ले तो ली, अब या तो वो ऐसा करता जैसे बाबा कहते हैं कि आप जानते हो कि ये व्यक्ति ऐसा है, आप जानते हो, जानने तक सीमित रखो, लेकिन उसको बार बार सोच करके, वैसे वाइब्रेशन बना करके, वैसी वृत्ति बना करके उसको फैलाओ मत। लेकिन हमने केवल जानने तक सीमित नहीं रखा, उसको स्वीकार कर लिया तो क्या होगा? वो अंदर से फिर बाहर भी निकलेगा, ली हुई चीज तो बाहर निकलती है ना। अब जैसे देखो, मान लीजिए हम रास्ते में जा रहे थे, किसी व्यक्ति ने जाने अनजाने कांटे बिखेरे हुए थे, हमको भी उसमें से एक कांटा चुभ गया, कांटा चुभा, खून निकला, दर्द हुआ, हमारे अंदर से कराह निकली। अब जब कराह निकली तो एक तरीका तो ये है कि हम कहें कि भाई जिसने ये कांटे बिखराए उसको भी एक दिन ऐसा ही कांटा चुभना चाहिए, और उसको तब पता पड़ेगा कि कांटा चुभने का दर्द क्या होता है, कैसा आदमी है रास्ते में कांटे बिखरा के रखता है। और हम कराते भी रहे और उसको ऐसे ऐसे बोलते भी रहे, ऐसे ऐसे सोचते भी रहे, और साथ में ये भी सोचते हैं कि जल्दी वो घड़ी आए जब उसको भी चुभे, वो भी हमारी तरह कराहे, और वो मेरे पास आए, अगर मुझे उसका कांटा निकालने का मौका मिला तो मैं उसे उलाना जरूर दूंगा कि देख तूने बिखराए तब दूसरों को भी ऐसे ही दर्द हुआ था, आज देखा तेरे को कैसा दर्द हो रहा है। एक तो ये तरीका है, कांटा चुभने के बाद हम इस तरह भी सोच सकते हैं। और दूसरा तरीका एक और भी है, जब हमको कांटा चुभा, दर्द हुआ, तो हमने उसको फटाफट निकाल करके फेंक दिया और अपने मन में सोचा कि ये कांटा बिखराने वाला आदमी, इसको तो मुझे अपना गुरु बना लेना चाहिए, कैसे? इसने मुझे एक पाठ पढ़ाया। कौन सा पाठ पढ़ाया? ये पाठ पढ़ाया कि जो गलती इसने की वो गलती मैं नहीं जीवन भर करूंगा। ये तो बहुत अच्छा है, अच्छा है इसने गलती करके मेरे को सिखा दिया, मेरे को गलती नहीं करनी पड़ेगी। हर गलती को करके हम खुद सीखें, ऐसे तो फिर जीवन बहुत लंबा चाहिए, जीवन बहुत छोटा है, सीखना बहुत कुछ है। तो जरूरी नहीं कि हम गलती करके सीखें, दूसरे ने गलती की उससे भी हम सीख लें, तो इस छोटे से जीवन में हम बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो हमने उस आदमी को दिल से धन्यवाद दिया और मन में सोचा कि शुक्रिया, तूने हमको एक पाठ पढ़ा दिया मुफ्त में, तूने गलती की पर हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो ये क्या हुआ, उसने दुख दिया पर हमने लिया नहीं, उसने बददुआ दी लेकिन हमने ली नहीं, उसने गलत कार्य किया लेकिन हमने उसको अच्छा बना दिया, हमने उसको एक शिक्षा में परिवर्तित कर दिया। तो बाबा कहते हैं, बच्चे आप उस आदमी को नहीं बदल सकते लेकिन आप अपने दृष्टिकोण को तो बदल सकते हो, विचार को तो बदल सकते हो। अब अगर हम उस दुख को दुख के रूप में स्वीकार करते तो उसको बांटते फिरते, और दुख को सुख बना लिया तो उसकी जड़ें ही खत्म हो गई, बांटने की जरूरत ही नहीं रहेगी। इसलिए बाबा कहती हैं, अब ब्राह्मण बच्चों का ये पुरुषार्थ चाहिए कि वो गलत बात को, गलत चीज को उसी दृष्टि से ना देखें लेकिन उसको परिवर्तन करके देखें। आजकल आपने देखा होगा दुनिया में इस चीज का बड़ा प्रचलन है, एक विषय स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है, उसका नाम है समथिंग आउट ऑफ नथिंग, माना जो कुछ भी नहीं है उससे कुछ ना कुछ बना लेना। और जैसे कलाएं सिखाती हैं, उस कलाओं में एक कला ये भी होती है कि वेस्ट को बेस्ट कैसे बनाएं। तो पुराने जमाने में जिन चीजों का एक पैसा भी नहीं कीमत होती थी, आजकल लोग उन्हीं चीजों को इकट्ठा करके उन्हें बेचते हैं और माला माल हो जाते हैं, क्योंकि समय अनुसार उन चीजों की कीमत बढ़ गई, चीजों की कीमत बन गई। तो बाबा कहते हैं, जैसे दुनिया में ये एक नया सब्जेक्ट बन गया, दुनिया में ये एक कला मानी जाती है, तो हमारी जो 16 कलाएं हैं सतयुग में, जो 16 कलाएं हैं, वैसे तो 16 कला परफेक्शन का प्रतीक है, जैसे रुपए में 16 आने होते हैं तो हम कहते हैं 16 आने रुपया पूरा हो गया, बात ठीक होती है तो भी कहते हैं 16 आने सत्य है, चंद्रमा की भी 16 कलाएं मानी जाती हैं। वो तो सतयुग का रूप दूसरा है, लेकिन संगम युग में भी हमको जो 16 कलाएं सीखनी है उनमें एक कला ये भी है कि हम गलत को ठीक बना दें, नेगेटिव को पॉजिटिव बना दें, परिवर्तन कर दें। ये बहुत बड़ा चमत्कार है, जैसे एक जादूगर जादू दिखाता है, होती है चीज कोई और उसका रूप कोई बना देता है, तो ये रूहानी जादू है, चीज का रूप कोई था लेकिन हमने ऐसी दृष्टि बदली, ऐसी वृत्ति बनाई कि उस चीज का रूप ही बदल गया, और जो दे रहा था उसको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इसको कह तो क्या रहा था, दे तो क्या रहा था, लेकिन इसने तो उसका रूप ही बदल दिया। तो वो भी आगे से अपने उस कार्य को छोड़ करके बदल जाएगा। बहुत मिसाल है ऐसे दुनिया में, जैसे एक मिसाल देते हैं कि एक बार एक सन्यासी आ रहा था, और पहले जमाने में तो लोग छूत अछूत बहुत करते थे। एक बेचारी जमादारनी झाड़ू लगा करके रास्ते में जा रही थी, तो वो भगवान की भक्त, लेकिन कभी पलड़ा दुनिया की तरफ झुक जाता था, कभी भगवान की तरफ झुक जाता था। कई बार सोचती थी कि मैं पूरी तरह भगवान की बन जाऊं तो कितना अच्छा हो, कई बार सोचती थी नहीं नहीं अभी तो मुझे दुनियादारी निभानी है, मैं कैसे ऐसे कर सकती हूँ। तो जब सन्यासी आ रहा था, उसको बड़ा गुस्सा आया जमादारनी को देख करके कि इसने तो मेरा रास्ता ही अपवित्र कर दिया। उसने दूर से ही बहुत जोर से डांट फटकार से उसको कहा कि ये जमादारनी, मैं आ रहा हूं तो एक तरफ हट जा। अब उसने तो बड़े गुस्से में कहा था, नफरत से कहा था, और एक प्रकार से उसको बददुआई दी थी, नफरत की बात थी ना। लेकिन जमादारनी ने इसका अर्थ क्या निकाला, अरे सन्यासी महात्मा के मुंह से तो आज वरदान निकल आया, मैं रोज सोचती थी कि एक तरफ हट जाऊं लेकिन मैं डावा डोल थी, आज इसने मुझे वरदान दे दिया कि तू एक तरफ हट जा, बस मैं आज एक तरफ हो जाऊंगी, आज मैं पूरी तरह भगवान की हो जाऊंगी, अब मैं डावाडोल नहीं रहूंगी। अब सन्यासी ने दी बददुआ और उसने उसको बना लिया अपने लिए वरदान और वो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग गई। इसी तरह से एक बच्चा था, उसका पिताजी कचहरी में काम करता था, साधारण सेवादार था, चतुर्थ श्रेणी का सेवक जिसको कहते हैं। तो एक दिन घर में माँ ने कहा बेटा पिताजी को कचहरी से बुला के ले आ, जरूरी काम है। वो गया, गया उसे पता तो था नहीं, छोटा ही था अभी, इधर देख उधर देख, पता नहीं पिताजी कहाँ हैं। तो जैसे छुट्टी का टाइम था, अफसर लोग भी अपने चाय पानी पीने गए थे, ढूंढता ढूंढता उसने देखा ये बड़ा सुंदर कमरा है और एक कुर्सी पड़ी है, पिताजी आएंगे किसी से पूछूंगा, कोई दिख नहीं रहा, तब तक इस कुर्सी पे बैठ जाता हूँ। बैठ गया, भोला था, छोटा था। वो कुर्सी जज की थी, जज चाय पानी पी के आया तो देखा एक बच्चा बैठा है, जज को बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में उसने कहा कि तुम्हारी ये हिम्मत, तुम जानते नहीं हो ये कुर्सी किसकी है? अरे इस कुर्सी को तो इतने लोग सलाम करते हैं और तुम इसके ऊपर बैठे हुए हो, उतरो इस पर से, इस पर बैठने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत लायकियत चाहिए, किसके हो तुम? तो उसने अपने पिताजी का नाम बताया तो जज को और ज्यादा गुस्सा आ गया, तुम चतुर्थ श्रेणी के एक सेवक के बच्चे और तुमने इतनी हिम्मत की, तुम्हारा बाप तो इस कमरे में भी डरते डरते घुसता है, बच्चे को तो पता नहीं होता है। अब बच्चे को ये सब बातें बड़ी अजीब लग रही थी, मैंने कुर्सी पे बैठ के क्या अपराध कर दिया, थोड़ा दुख भी हुआ, बातें चुभी भी, उतर गया कुर्सी से। लेकिन जब उस कमरे से बाहर निकला तो उसने प्रण किया कि ठीक है बाप मेरा भले ना सही जज, लेकिन मैं एक दिन जज बनूंगा और इसी कुर्सी पे आके बैठूंगा। घर में गया, पिताजी को तो ले गया, लेकिन अंदर ही अंदर दृढ़ संकल्प कर लिया, वो दृश्य भूला ही नहीं उससे, और चिंतन करता रहा, बनना है तो मुझे जज ही बनना है, बनना है तो मुझे जज ही बनना है। वो बात उसको एक प्रकार से बार बार प्रेरित करती रही, प्रेरणा देती रही, और आखिर पढ़ लिख करके वो एक दिन जज बना और जज की कुर्सी पर बैठा। अब कहने वाले ने तो बात कह दी, भूल गया वो तो कह करके, लेकिन जिसने सुना उसने उस बात को दुआ बना लिया, वरदान बना लिया, प्रेरणा बना लिया, और जीवन में उस बात की बदौलत शिक्षा प्राप्त की। अब वो क्या सोचेगा कि थैंक्स उस जज का, अगर वो उस दिन मुझे डांट ना मारता तो आज मैं जज भी ना होता, तो वो डांट उसके लिए अच्छी बन गई ना। तो जो व्यक्ति ग्लानी को महिमा में बदल दे, दुख को सुख में बदल दे, वो जीवन में सफलता प्राप्त करता है। लेकिन कोई ग्लानी को ग्लानी के रूप में स्वीकार कर ले तो उसका क्या हाल होता है, सबको अनुभव है ना। किसी ने कोई बात कह दी और हमने उसको लगा लिया तो क्या होता है, वो बात सारा दिन बुद्धि में घूमती रहती है। एक माता ने अनुभव सुनाया कि मैंने कल रात सोया नहीं और आज खाना नहीं खाया, तो मैंने पूछा बहन जी ऐसी क्या बात हो गई, तो कहती है हमारे पड़ोस में एक परिवार रहता है, उसके बच्चों की और हमारे बच्चों की आपस में लड़ाई हो गई, छोटे छोटे बच्चे तो पल में लड़ते हैं, पल में खुश हो जाते हैं, कोई खिलौना होगा, एक बच्चे ने कहा मुझे दे दे, दूसरे ने कहा नहीं देता हूं, वो आपस में खींचतान हुई तो एक बच्चे को जरा चोट लग गई, उसने जाके घर में शिकायत कर दी। जब उसने शिकायत की तो उसके माँ बाप तो ज्ञान में नहीं चलते थे, लेकिन ये बहन तो ज्ञान में चलती थी। जब उसने शिकायत की तो माँ बाप को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहना शुरू किया होगा कि भाई तुम अपने बच्चों को नहीं संभालते, तुम्हारे बच्चे तो हमारे बच्चों को ये कर देते, ऐसे ऐसे कुछ बोला होगा। बच्चों की बात से बात शुरू हुई और बढ़ती बढ़ती फिर माँ बाप तक भी चली गई, उन कहने वालों ने इनको भी बहुत कुछ कह दिया, भाई तुम संभालते नहीं हो, जैसे लोग कह देते हैं गुस्से में आके। तो इसने एक दो बातें तो सुनी और उसके बाद इसकी भी हिम्मत खत्म हो गई सुनने की। बाबा तो कहते हैं ना कि बच्चे आप में बोलने की शक्ति कम होनी चाहिए और सुनने की शक्ति ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मुख एक है और कान दो हैं। तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हारी सुनने की शक्ति खत्म क्यों हो गई। बाबा तो हमेशा कहती हैं कि एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो, या तो सुनो ही मत। तो उसने कहा कि जब उसने बोला तो मेरे मन में आया कि मैं कोई कम हूं क्या। जब हम ये शब्द सोचते हैं कि मैं कोई कम हूं क्या, तो क्या होता है, सुनने की शक्ति नष्ट हो जाती है और बोलने की शक्ति पैदा हो जाती है। अब जब हम ये कहते हैं कि मैं कोई कम हूं क्या, वो इतना बोल रहा है, क्या मुझे जबान नहीं है, मैं नहीं बोल सकता क्या, या वो मुझे ऐसे ऐसे अपशब्द कह रहा है, मेरे पास अपशब्दों की कमी है क्या, उस समय हमको क्या सोचना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे आप किसी बात में कम नहीं हो, आप तो दुनिया में सबसे ऊंचे हो, आप जैसा महान तो इस संसार में कोई भी नहीं है, आप तो ब्राह्मण चोटी हो। ये बातें तो हमको बाबा ने बताई कि आप किसी से भी कम नहीं हो, राजा के बच्चे से भी आप कम नहीं हो, सतयुग के देवी देवताओं के बच्चों से भी आप कम नहीं हो, किसी महात्मा से भी आप कम नहीं हो, लक्ष्मी नारायण के बच्चे भी आपके आगे क्या है, आखिर उनके बाप देवता और आपका बाप भगवान। लेकिन जब कोई गाली देता है तब तो हमको ये सोचना चाहिए कि गाली देने में तो मैं इससे बहुत कम हूं। उस समय हमको कम बनना चाहिए कि ज्यादा बनना चाहिए। अगर कोई नेगेटिव बोलता है तो उस समय हमको क्या सोचना चाहिए, मैं बाकी बातों में तो कम नहीं हूं लेकिन इस मामले में तो मैं बहुत कम हूं, मुझे आता ही नहीं है ऐसा बोलना। जैसे किसी को बुखार चढ़ जाए तो हम ये तो नहीं कहते कि भाई बुखार में मैं कोई कम हूं क्या, ऐसे सोचते हैं क्या। किसी को चेचक निकल आए, भाई चेचक में मैं कोई कम हूं क्या, ऐसे सोचते हैं क्या। तब तो सोचते हैं भाई इसको कितना भी निकले हमको नहीं निकलना चाहिए, इसको बुखार चाहे कितना भी चढ़े पर भगवान हमें बुखार से बचा के रखना, हमारे पास ना आए। तो जैसे बुखार, जैसे कैंसर, जैसे चेचक, कोई भी बीमारी खतरनाक होती है, ऐसे ही क्रोध, अपशब्द, गाली, नकारात्मक बातें, ये सब भी क्या है, ये भी बुखार ही है, ये भी चेचक ही है, ये भी कैंसर ही है, ये भी फोड़े ही है। तो हम उस बुखार को तो स्वीकार नहीं करना चाहते, तो इसको भी तो नहीं करना चाहिए ना। उस समय क्या सोचना चाहिए कि इन सब बातों में मैं कम हूं और इनमें मेरी कमी ही अच्छी है, इनमें मैं कम क्या, इनमें तो मैं जीरो हूं और मेरा जीरो रहना ही अच्छा है, क्योंकि जो इन बातों में जीरो बनेगा वही हीरो बनेगा और जो इन बातों में हीरो बन जाएगा वो जीरो बन जाएगा। तो हमको क्या बनना है, हीरो बनना है ना। तो इन सब बातों में हम जीरो हैं। शास्त्रों में कई लोगों के उदाहरण आते हैं कि उनको पता ही नहीं था, जैसे सुखदेव की बात आती है, सुखदेव को पता ही नहीं था कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार क्या होते हैं। तो लोग उनको कहते थे कि सुखदेव जा रहा है, जाने दो इसको, इसको मालूम ही नहीं है कि विकार क्या होते हैं, इसलिए इससे डरने की, छिपने की जरूरत ही नहीं। तो सुखदेव को दिखाती हैं बिल्कुल इनोसेंट, और उसका नाम भी कितना सुंदर है, सुख कौन दे सकता है, जो विकारों से इनोसेंट होगा वही तो सुख दे सकता है, जो विकारों में ही हीरो होगा वो कभी किसी को सुख दे सकेगा क्या। इसलिए जो बुराइयों में इनोसेंट है, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि आप बुराइयों में इनोसेंट हैं और अच्छाइयों में सेंट, सेंट माना संत। दूसरा उदाहरण लक्ष्मण जी का दिखाते हैं, जब सीता के वो जेवर पड़े हुए देखे और उसको पूछा गया तो उसने क्या कहा? उसने कहा, मैं तो केवल पांव पांव का जेवर पहचानता हूं। कितनी निर्मल वृत्ति थी उसकी। बाबा ने तो हमें ज्ञान देकर के आत्मा का पाठ सिखा दिया, लेकिन भक्ति मार्ग के हिसाब से उसको बहुत निर्मल वृत्ति वाला मानती, जिसकी दृष्टि कभी किसी पर गई ही नहीं। हनुमान जी का कितना गायन है, पवित्रता के कारण। उस पवित्रता के बल से वो राम के सारे कार्य पूरे कर लेता था। तो जिसमें अपवित्रता का अंश नहीं है और जिसमें पवित्रता फुल है, वही राम के काम संवार सकता है और वही सबको सुख दे सकता है, वही अपने मन को लक्ष्य में टिका सकता है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे दूसरा कुछ भी बोले, लेकिन आप पर उसका असर नहीं आना चाहिए। तो उस बहन ने सुनाया कि जब मैंने बोला, बोलने के तुरंत बाद मुझे बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने क्यों बोला। पहले तो उसकी बातें सुनकर के दुख हुआ और फिर मैं बोली तो अपने बोलने का दुख हुआ, और वो दुख इतना हुआ कि सारी रात मुझे नींद नहीं आई और फिर मैंने खाना भी नहीं खाया। क्योंकि बोलने वाला, ग्लानी करने वाला तो जाकर के सो गया, लेकिन जिसने उस ग्लानी को स्वीकार किया, उसको क्या करना पड़ेगा? वो तो चिंतन करेगा, जागेगा, उन बातों को दोहराता रहेगा। और जब हम उन बातों को दोहराते हैं तो क्या हो जाता है? जब हमने कोई बात सुनी, खराब बात सुनी और मन में उसको दोहराया तो क्या होता है? वो पक्की हो जाती है ना। जैसे बच्चे स्कूल में पहाड़े दोहराते हैं, दो दुनी चार बार बार दोहराते हैं, या जैसे ABCD सीखते हैं बार बार दोहराते हैं, या जैसे कैक सीखते हैं बार बार दोहराते हैं। तो बच्चे बार बार क्यों दोहराते हैं? मास्टर उनको क्यों कहता है कि तुम बार बार दोहराओ? इसलिए कहता है कि दोहराने से ये बातें पक्की हो जाएंगी। तो अगर हम उस बात को मन में बार बार दोहरा रहे हैं जिसने हमको वो बात कही, इसका मतलब हम क्या करना चाहते हैं? उस बात को पक्का करना चाहते हैं। और पक्का करके, जब बात को पक्का करेंगे तो ऐसे ही थोड़े छोड़ देंगे, फिर उसको कहीं ना कहीं काम में भी लगाएंगे। अगर उसको पक्का नहीं करते थे तो तुरंत भूल जाते थे। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ऐसी नेगेटिव बातें, सुनी हुई बातें, व्यर्थ की बातें अंदर लेकर ही मत जाओ। एक बार भी उस पर चिंतन मत करो। एक बार भी चिंतन किया तो वो लकीर गहरी हो जाती है, दूसरी बार चिंतन किया तो और गहरी हो जाती है, और ऐसे वो गहरी होती जाती है। और जो बात आपको नहीं आती थी आप उसको भी सीख जाते हो। फिर छोटी छोटी बातें अंदर भर जाती हैं, फिर एक दिन आवेश के रूप में बाहर निकलती हैं। इसलिए छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा बोझ बन जाती हैं, व्यर्थ की बातें बहुत बड़ा बोझ बन जाती हैं। अब जैसे देखो, कोई व्यक्ति हमको फूल दे, अब फूल में कितना वजन होता है? अगर हम उसको तोलें, गुलाब का एक छोटा सा फूल, मुश्किल से 2-4 ग्राम उसमें वजन होगा, चलो 5 ग्राम होगा। उस फूल को हमें कोई दे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर कोई कहे कि इसको आप हर समय हथेली पर रखो, तो क्या होगा हमारे लिए? वो क्या बन जाएगा? बोझ बन जाएगा। लिया और रख दिया फिर तो ठीक है, लेकिन अगर पकड़ के रखना पड़े तो वो बोझ बन जाएगा, बंधन बन जाएगा। हमारा एक पूरा हाथ उसमें व्यस्त हो जाएगा, उस हाथ से हम दूसरा काम कर ही नहीं सकेंगे। तो बात कोई भी हमारे सामने आई, बातें तो आएंगी, जीवन भर आएंगी, लेकिन एक होता है कि बात को मौके पर सुनना भी कई बार जरूरी होता है। इसी तरह सुना जैसे फूल को पकड़ा और फिर फूल को रख दिया, बात को सुना और तुरंत उसको रख दिया, समा लिया, उसको भुला दिया तो ठीक है। लेकिन अगर हमने उस बात को, खराब बात को यहां पर रख लिया तो क्या होगा? आज भी रखे रखा, फिर कल भी वो याद आई, फिर परसों भी याद आई, तो वो बात क्या बन गई? बोझ बन गई। अब कोई हमको कहेगा कि भाई चलो योग करें, तो कहेंगे नहीं आज ना थोड़ा मन भारी भारी है। अच्छा भाई भारी क्यों है? मन का जो आकार है वो तो कण जितना है। अब कण जितना मन, मन जितना कैसे बन गया? इसलिए बन गया कि वहां पर एक बात रखी हुई है और वो दिन बाय दिन उसका वजन बढ़ता जा रहा है। हम सोचते हैं, सोच करके उसमें थोड़ी लिपापोची भी करेंगे, अपनी तरफ से भी उसमें कुछ मिलाएंगे, अगले दिन किसी को बताएंगे तो दो बात जोड़ के बताएंगे, उसने मुझे ऐसे बोला था, फिर वो भी कुछ और जोड़ देगा, फिर तीसरे दिन उसमें और कुछ जुड़ जाएगा, वो जुड़ते जुड़ते बात बड़ी हो गई, फिर वो यहाँ रखी गई, फिर उसका वजन बन गया और मन बड़ा भारी हो गया। अब मन भारी हो गया ना तो योग में लगता है, ना अच्छी बात सुनने में लगता है, क्लास में गए किसी ने अच्छी बात सुनाई, अब उस समय तो क्लास का परवाह होता है, बात सुन ली, बाहर निकलेंगे तो वो जो बात अंदर कुंडली मार के बैठी हुई थी ना वो फिर सक्रिय हो जाएगी, और जो क्लास में बातें सुनी थी उनको वो दबा देगी। फिर कोई पूछेगा भाई आपने क्या सुना, तो कहेंगे बातें तो बहुत अच्छी अच्छी सुनी थी, बहुत अच्छा लगा था सुनते समय, लेकिन अभी ना याद नहीं है। क्योंकि याद तो वो बात है, वो अपना अधिकार मन पर इतना जमा के बैठी हुई है कि वो दूसरी को आने नहीं देती। दूसरी बात अंदर आती है तो कहती है खबरदार अंदर आई तो, मैं तेरे से पहले बैठी हुई हूं और मेरा आकार तेरे से ज्यादा लंबा चौड़ा है और मेरे में वजन भी ज्यादा है, इसलिए मेरा राज्य है यहाँ, तुम यहाँ नहीं आ सकती। तो वो बात अपना राज ऐसा पक्का जमा के बैठ जाती है। अब जैसी यहाँ एक बात होगी वो अपने जैसी और बातों को तो इनवाइट करेगी, लेकिन अपने से विपरीत बातों को तो आने नहीं देगी। तो खराब बातें तो उसको सहयोग देती रहेंगी, वो तो अंदर चली जाएंगी, अच्छी वालियों को जगह नहीं मिलेगी। और जब ऐसे मन में बातें इकट्ठी हो जाती हैं तो एक दिन क्या होता है, जब भर जाता है, जैसे कहते हैं ना प्रेशर कुकर में प्रेशर भर गया तो उसमें तो एक सीटी लगी होती है तो उससे बाहर निकल जाता है प्रेशर। अब यहां जो बातें भरी होती हैं वो किधर से बाहर निकलती हैं? कई बार तो मुख से बाहर निकलती है और कई बार वो इतनी भर जाती हैं कि वाणी भी उनको प्रकट नहीं कर पाती, तो कहां से बाहर निकलती है? हाथों से, दृष्टि से, या और भी कई तरह के ऐसे कर्म होते हैं जो अंदर के आवेश को बाहर प्रकट करने के लिए हम यूज करते हैं। इस पे महात्मा बुद्ध की एक बात सुनाते हैं कि एक बार वो अपने साथी आनंद के साथ कहीं पे जा रहे थे तो एक व्यक्ति दूर से दौड़ा दौड़ा आया, दौड़ता आ रहा था और जब बिल्कुल बुद्ध के नजदीक आया तो उसने बुद्ध की छाती पर थूक दिया। आनंद ने देखा तो उसको बड़ा जोर से गुस्सा आया, वो गुस्से में कुछ बोलता, इतनी देर में महात्मा बुद्ध ने उसको कहा कहिए कुछ और भी कहना चाहते हैं क्या आप? उस थूकने वाले आदमी को कहा। बस उसने ये पाप कर्म किया और उल्टे पांव दौड़ गया, बोला नहीं कुछ भी। तो आनंद ने कहा कि भंते आप तो उसको ये पूछ रहे हो कि और भी कुछ कहना है क्या? अरे उसने बोला तो कुछ भी नहीं, ऐसा खराब कर्म किया, अगर आप मुझे करने देते तो मैं उसका उसी समय उसको बड़ा दंड देता। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते रहे, आगे चल पड़े। रात हो गई, अगले दिन सूर्योदय होने वाला था। वो चलते जा रहे थे, इतनी देर में देखा कि दूर से एक आदमी दौड़ा आ रहा है। नजदीक आने पे मालूम पड़ा कि तो वही आदमी है। जब बिल्कुल नजदीक आया तो वो आदमी महात्मा बुद्ध के पांव पर सिर रख करके इतना रोया, उसके आंसुओं से महात्मा बुद्ध के पांव भीग गए। बुद्ध ने फिर अपना वही शब्द दोहराया, कहिए, कुछ और भी कहना चाहते हैं तो वो भी कह दीजिए। ये सब करके और वो फिर मुड़ गया तो आनंद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आदमी बोलता तो कुछ भी नहीं है और ये बुद्ध को लगता है कि ये बोल रहा है, राज क्या है। तो महात्मा बुद्ध ने उसको कहा कि देखो आनंद, कभी कभी मनुष्य के भीतर के आवेग इतने शक्तिशाली होते हैं कि वाणी उनको प्रकट करने में असमर्थ होती है। हमारे पास इतने शब्द नहीं होते कि हमारे अंदर जो भावनाओं का वेग है उसे हम सही तरीके से किसी को बता सके, सुना सके। इसलिए हम उस वेग को अपनी एक्टिविटी के द्वारा प्रकट करते हैं। कल इसने जो वेग प्रकट किया वो घृणा का आवेग था। घृणा के लिए शब्द इसके पास छोटे पड़ रहे थे, इसलिए अपनी घृणा को प्रकट करने के लिए इसने वो वाला कर्म किया। इसने वो कर्म कर तो दिया लेकिन मैंने इसकी घृणा को एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। मैं मुस्कुराता रहा, इसको प्यार से देखता रहा और मैंने प्यार से इसको कहा कि और भी कुछ कहना है तो कह लो, क्योंकि इसने जो किया उसको मेरा हृदय समझ रहा था। अभी आदमी चला गया, इसकी घृणा इसी के पास रही, मैंने तो स्वीकार की नहीं। अब इतने आवेग को लेकर के जब ये गया तो इसे सारी रात नींद नहीं आई। मैंने एक पवित्र आत्मा के साथ बड़ा बुरा कृत्य किया, करने के बाद पश्चाताप होता है। पहले तो वो आवेग करने के लिए उकसाता है और कर लेने के बाद पश्चाताप होता है। इसको बड़ा पश्चाताप हुआ, सारी रात ये सोचता रहा कब सुबह हो, कब मैं जाऊं, कब मिलूं। अब पहले घृणा का आवेग था और फिर पश्चाताप का आवेग भर गया। अब पश्चाताप को प्रकट करने के लिए भी इसके पास शब्द नहीं थे, कैसे प्रकट करे। इसलिए उसको भी अपने कर्म के द्वारा प्रकट कर रहा था, आकर के सिर रख दिया और आंसू बहाता रहा। फिर मैंने इसको कहा कि कुछ और कहना है तो कहिए, क्योंकि उसकी पश्चाताप की भाषा भी मेरे तक पहुंच रही थी। मेरा तब भी इसके साथ प्यार था और मेरा अब भी इसके साथ प्यार है। मैंने इसकी ना घृणा को स्वीकार किया ना इसके पश्चाताप को स्वीकार किया। मेरे पास तो मेरी अपनी चीजें ही बहुत हैं और फिर इतना लंबा रास्ता है, पता नहीं कौन क्या देगा कौन क्या देगा। मैं उन सब चीजों को अगर स्वीकार करूं तो मैं तो बोझिल हो जाऊंगा। इसलिए मैं अपनी ही चीजों से भरपूर हूं, संपन्न हूं। तो आनंद को समझ में आया कि ऐसे लोग घृणा के पात्र नहीं होते, बदले के पात्र नहीं होते, लेकिन दया के पात्र होते हैं। वो परवश होते हैं, वो किसी की सीखी सिखाई बातों से ऐसा कर्म कर लेते हैं। उनके पास अपना विवेक नहीं होता। जैसे विवेक वाला आदमी है वो तो सोचेगा कि मेरे सामने कौन है, मैं इसके साथ कैसा व्यवहार करूं। लेकिन जैसे लोग बंदर को नाचना सिखा देते हैं, बंदर को अपना विवेक थोड़े है, मालिक ने जो सिखा दिया सीख लिया। और भी कई ऐसे पशु होते हैं, उनको जो मालिक ने सिखा दिया सो सीख लिया। तो कई मनुष्य भी ऐसे होते हैं जो अपनी बुद्धि का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते और उनको जो कोई जैसा सिखा दे वो वैसा ही सीख करके तुरंत वैसा व्यवहार कर देते। अब उसकी चाबी तो किसी और ने भरी है और वो हमारे साथ अगर ऐसा व्यवहार कर रहा है तो हमें दुखी होने की क्या जरूरत है, वो परवश है, उसको चाबी कोई और लगाता है। इसलिए ऐसे परवश आदमी का जिसके पास विवेक नहीं, सोचने की अकल नहीं, राइट रॉन्ग को समझ नहीं सकता, तो ऐसे परवश आदमी पे क्या क्रोध करना। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति ग्लानी करने वाले पर कभी क्रोध नहीं करता। वो जानता है कि मैं कितना महिमामय हूं, भगवान की दी हुई कितनी महिमा मेरे पास है, भगवान ने मुझे कितना ऊंचा बनाया है, वो जानता है। और दूसरे ने अगर कर भी दी तो वो बुद्ध की तरह मुस्कुराता रहता है और ही उसे कहता है, भाई तेरे को और भी कुछ कहना है तो कह ले, ताकि तू खाली हो जाए, तू खाली हो जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे दुआएं आप तब दे सकेंगे, ये अंडरलाइन करने की बात है, जब आप बद दुआओं को स्वीकार नहीं करेंगे, जब आप ग्लानी को स्वीकार नहीं करेंगे, जब आप ये नहीं सोचेंगे कि उसने मुझे धोखा दे दिया। धोखा आदमी दूसरे को नहीं देता, खुद को देता है। जब आप ये नहीं सोचेंगे कि उसने मेरा बुरा सोचा, हम दूसरे का बुरा नहीं सोचते, हम अपना बुरा सोचते हैं। जैसे अगर कोई आदमी किसी की हत्या कर दे तो दुनिया में एक मुहावरा कहते हैं कि किसी की हत्या करना माना खून में अपने हाथ रंगना। अब संकल्पों से अगर कोई किसी को बददुआ दे तो वो भी क्या हो गया, अपने संकल्पों को खून में रंगना। तो अगर हम बददुआ दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अपने संकल्पों को खून में रंग रही है। दूसरे का नुकसान तो बाद में होगा, पहले किसका नुकसान हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा, तो हम घाटे वाला काम क्यों करें। और अगर हमने उन बद दुआओं को स्वीकार कर लिया तो भी हमारा नुकसान है। इसलिए बाबा ने कहा ना दो और ना लो, बद दुआ ना दो और बद दुआ ना लो, इसके बजाय दुआएं दो और दुआएं लो। ये अगर हम निरंतर करेंगे तो पुण्य आत्मा बनेंगे। कई बार हम कहती हैं कि मैं सोचना तो नहीं चाहता लेकिन क्या करूं, मन में ये बात बार बार आ जाती है। मैं जानता हूं कि मैं जो सोच रहा हूं वो गलत है और मैं जानता हूं कि बाबा की श्रीमत प्रमाण मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन क्या करूं, ये बात हटती ही नहीं है, ये बात बार बार मन में आ जाती है। तो इसके लिए बाबा कहती हैं कि बच्चे मुझे ये नहीं करना, ऐसे सोचने वाला और फिर भी उस कर्म को करने वाला एक है या दो है, एक ही आदमी है ना जो ये सोच रहा है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए और फिर भी वो उस कर्म को कर रहा है, करने वाला भी वही है। तो ये पुण्य आत्मा बनने में सबसे बड़ी रुकावट है। पुण्य आत्मा की निशानी ये है कि वो जो सोचेगी वो वही करेगी, वो जिसको ठीक मानती है उस ठीक बात पे अडिग रहेगी। जैसे महाभारत में दुर्योधन का मिसाल दिखाते हैं। दुर्योधन क्या कहता था, वो कहता था कि मैं जानता हूं धर्म क्या है लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है, माना धर्म में मैं चल नहीं सकता, धर्म को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। और फिर कहता है कि मैं जानता हूं अधर्म क्या है लेकिन अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं है, मैं उससे दूर हट नहीं सकता। अब जानता तो वो भी था, वो जानता नहीं था कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, लेकिन जानते हुए भी बेचारा परवश था। अब उसका नाम तो दुर्योधन है, दू इसीलिए लगा उसको। लेकिन हम बाबा के बच्चे कौन है? हम तो पांडव हैं, शक्तियां हैं। कभी अर्जुन ने ऐसा कहा क्या कि मैं जानता हूं पर मैं कर नहीं सकता? कभी युधिष्ठिर ने ऐसा कहा क्या कि मैं जानता हूं पर मैं कर नहीं सकता? नहीं कहा ना। ये पांडवों की निशानी नहीं है, शक्तियों की निशानी नहीं है कि हम जानते हैं पर हम कर नहीं सकते। ये तो कौरवों की निशानी है। तो हम कौरवों की निशानी को अपने जीवन में रहने नहीं देंगे, उसको निकाल देंगे। ये दृढ़ संकल्प हमको करना है कि हम जो अच्छा मानते हैं वो अच्छे वाला ही करेंगे, और जिसको हम बुरा मानते हैं उस बुरे को हम निकाल करके ही रहेंगे। जब हम कहते हैं कि हम बुराई को दुनिया में नहीं रहने देंगे, हम एक ऐसा संसार बनाएंगे जिस संसार में बुराई का लेश मात्र भी नहीं होगा, तो संसार की बात तो बाद में है, पहले तो मुझे अपने जीवन से बुराई की जड़ें उखाड़नी है। तो शुरुआत में अपने से तो करूं। अगर मैं ही ये कहती रही कि मैं सोचती हूँ चाहती हूँ पर होता नहीं है, तो दुनिया का परिवर्तन होने में तो बहुत देर लग जाएगी। इसी को तो बाबा कहता है कि बच्चे देरी लग रही है, बच्चों का पुरुषार्थ ठंडा है। हमको अपने पुरुषार्थ को गर्म करना है, मना तीव्र है, सोचते ही तुरंत उस बात को धारणा में लाना है। तो बार बार याद करना है कि मैं पांडव हूं, मैं शक्ति हूं, मैं समर्थ आत्मा हूं, मैं निर्बल नहीं हूं, मैं जो चाहूं सो कर सकती हूं, क्योंकि मेरे साथ सर्वशक्तिवान भगवान है। और अगर हम अपनी शक्ति से नहीं कर पाते, अपनी शक्ति से तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, बाबा की शक्ति ही हमें समर्थ बनाती है, तो हम बाबा को बार बार कहें कि बाबा मुझे ये करके दिखाना ही है, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। अगर आप मेरे साथ हैं और फिर भी अगर मैं अपनी छोटी सी कमी को ना निकाल पाऊं, जानते हुए भी ना निकाल पाऊं, तो दुनिया में लोग कैसे समझेंगे कि इनके साथ भगवान है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे मुझे प्रत्यक्ष करने से पहले अपने आप को प्रत्यक्ष करो। अपने आप को प्रत्यक्ष करने का क्या अर्थ है? एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा था कि आप जो ज्ञान का उपदेश देते हैं, इन उपदेशों को सुन करके लोग हमारे नजदीक कैसे आएंगे और लोग आपको कैसे जानेंगे? अगर हम आपके उपदेशों का प्रचार करें तो क्या गारंटी है कि लोग सुनने आई जाएंगे, हमारे नजदीक आई जाएंगे, हमारी बात को मानी लेंगे? तो उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि जब एक फूल खिल जाता है और उसमें खुशबू, उसमें मकरंद और उसका आकार बहुत सुंदर हो जाता है, तो वो फूल निमंत्रण नहीं देता कि भंवरों आओ, मेरी महिमा करो या मेरे पर आकर्षित हो। फूल का काम है बन जाना, भंवरे अपने आप आ जाएंगे। तो उसने कहा कि आपका काम है मेरी शिक्षाओं का स्वरूप बन जाना, लोग अपने आप खींचे चले आएंगे, मेरी बातों को भी जान जाएंगे, मुझे भी जान जाएंगे। तो बाबा ने कहा अगर आप बच्चे चाहते हो कि बाबा प्रत्यक्ष हो जाए, तो आप पहले प्रत्यक्ष हो जाओ। प्रत्यक्ष होने का मतलब है सन शोज फादर, आप मैंने जो धारणाएं बताई हैं उनको अपने जीवन से प्रत्यक्ष कर दो, लोग अपने आप खींचे आएंगे। लोग पूछेंगे कि इनको ऐसा बनाने वाला जरूर कोई बहुत महान होगा, कौन है वो? ऐसे इस दुनिया में तो लोग मिलते नहीं, ऐसे त्यागी, ऐसे तपस्वी, ऐसे सच्चे, ऐसे अंदर बाहर से एक, जिनकी करनी कथनी एक है। दुनिया में तो करनी कथनी एक वाला कोई मिलता नहीं है। इतने ईमानदार जिनको किसी चीज का लालच नहीं है, और ऐसे मीठे जिनको कुछ भी कह लो पर कड़वाहट नहीं आती है, ऐसी इनकी सम अवस्था, निंदा स्तुति मान अपमान सब में ये समान है, और ऐसे ये मिलनसार, सबके साथ मिल लेते हैं, कोई किसी से दूरी नहीं, कोई किसी से नफरत नहीं। तो एक साथ इतने सारे गुण किसमें हो सकते हैं? कई महात्माओं में देखते हैं भाई एक गुण है दूसरा नहीं है, एक धारणा है दूसरी नहीं है, लेकिन इनमें तो सारी धारणाएं रहते भी बड़े साधारण है, कोई दिखावा भी नहीं है, अपनी महिमा भी नहीं करती है, इनकी महिमा तो इनके जीवन और इनके चरित्र से बोलती है। तो इस कलयुग में ऐसे लोग कहां से आ गए? हमने तो कभी किताबों में पढ़ा था कि ऐसे लोग होते हैं, साकार में तो देखा नहीं था। तो ऐसे साकार में ये चलते फिरते लोग हैं तो जरूर कोई तो इनका गुरु होगा, गाइड होगा, मार्गदर्शक होगा, कौन है? और उसमें फिर कितनी सारी ऊंची धारणाएं होंगी। तो वो देख तो हमें रहे हैं लेकिन उन्हें याद कौन आ रहा है? हमें पढ़ाने वाला, हमें बनाने वाला, हमें बताने वाला। तो हमें देखते हुए कौन प्रत्यक्ष हो गया? बाबा प्रत्यक्ष हो गया। इसलिए शिक्षाओं का स्वरूप बनना है, धारणाओं को जीवन में उतार करके दिखाना है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमको बोलना है और वैसा ही हमको करके दिखाना है। दुनिया में भी कहते हैं महान आत्मा की सबसे बड़ी निशानी है कि जो उसके भीतर है वही उसके बाहर है। जो अंदर एक रखे और बाहर बात दूसरी कहे वो आदमी तो बहुत ही खतरनाक होता है, दुनिया में भी ऐसा कहते हैं। और जो अंदर बाहर एक होता है वो तो भाई बहुत ही ऊंचा इंसान होता है। तो बाबा कहते हैं आप तो बहुत ऊंचे हो, तो हमारी ये ऊंचाई हमारे कर्मों से जब लोगों को दिखाई देगी तो वो अपने आप समझेंगे कि परमात्मा अपना कार्य कर रहा है और वो अपना कार्य करने के लिए आया हुआ है, तो उनको आकर्षण होगा। ये हमारा आखिरी सब्जेक्ट है, अब ये वाला पाठ बाकी रहा हुआ है। बाकी तो हम ज्ञान में बहुत होशियार हो गए, नियमों में भी बहुत होशियार हो गए और भी बहुत सारी बातों में बहुत होशियार हो गई, लेकिन अब हमको ये पाठ बाबा को पक्का करके दिखाना है। और जब ये पाठ पक्का करेंगे तो बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा, जब बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा तो क्या होगा, सतयुग भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा। एक भगवान के प्रत्यक्ष होते ही सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा, हम सब यही चाहते हैं ना? तो इस चाहना को पूरी कौन करेगा? हम सब पूरी करेंगे। हमको ये दृढ़ संकल्प करना है कि हम इस चाहना को अवश्य पूरा करके दिखाएंगे। इस चाहना को पूरा करना माना बाबा को प्रत्यक्ष करना। ओम शांति।
चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा,
यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकार दुनिया,
विदेही बने
बताया हुआ खेल पूरा जगत का ये नाटक रहा न अधूरा
यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए
यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए
हमें तो वतन की बहुत याद आए
हमें तो वतन की बहुत याद आए यादों में बात